दिन भर तारीख 1 सितंबर दिन शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल के पहले केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे, विदाई को लेकर राजीव प्रताप रूडी ने कहा,
ये सब राजनीतिक निर्णय है और समझता हूँ कि पार्टी के अध्यक्ष इन सब निर्णय को करते हैं।
क्या है केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की वजह?
हमारी जो जानकारी है कि पीएमओ लगातार इसकी परफॉर्मेंस एक ऑडिट की है, उनको लग रहा है कि भाई जो कर नहीं पा रहे हैं उनको हो सकता है वो ज्यादा पार्टी के लिए काम करें।
और विवेचना में सुनवाएंगे 45 साल पहले म्यूनिख ओलंपिक में 11 इसराइली खिलाड़ियों को बंधक बनाने और उन्हें मारे जाने की दास्तां।
मेरी नजर गई तो ऊपर के दूसरे या तीसरे फ्लोर के ऊपर नकाबपोश एक इंसान बंदूक हाथ में लिए और नीचे उनकी बातचीत किसी से हो रही है, तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या ये।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक परसों यानी रविवार को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। नए मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जा रहा है आधिकारिक तौर पर इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इससे पहले कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है जिनमें राजीव प्रताप रूडी भी शामिल हैं। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर में कचड़े का एक विशाल ढेर खिसकने से कम 2 लोग मारे गए हैं और कई अन्य लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर के मुताबिक कचड़े का विशाल ढेर बारिश की वजह से खिसका, जिसकी चपेट में कुछ वाहन भी आए जो पास की नहर में जा गिरे। राहत और बचाव कार्य में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल की मदद ली जा रही है। उधर मुंबई में एक दिन पहले धराशायी हुई इमारत के मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इस बीच खबर मिल रही है कि दिल्ली के सदर बाजार इलाके में भी एक इमारत धराशायी हो गई है। अफ्रीकी देश केन्या के सुप्रीम कोर्ट ने देश में पिछले महीने हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को अमान्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के भीतर राष्ट्रपति चुनाव फिर से कराने का आदेश भी दिया है। विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया है। राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा ने कहा कि वे इस फैसले से सहमत नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर नैरोबी के एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमें एक बार फिर चुनाव का मौका मिल रहा है। इस बार हमें अदालतों पर और अधिक भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसका स्वागत करते हैं। हवा में एक नई उमंग महसूस हो रही है। ये थे नैरोबी में एक स्थानीय व्यक्ति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पूर्वोत्तर म्यांमार में इस हफ्ते अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान और सुरक्षा बलों के बीच हुए संघर्ष में लगभग 400 लोग मारे गए हैं। हिंसा की वजह से रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी वाले गांवों से लगभग 40,000 लोग भागकर बांग्लादेश चले गए हैं। बांग्लादेश में मौजूद संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी की वरिष्ठ अधिकारी विवियन टेन का कहना है, यहाँ पर इस समय एक अनुमान के मुताबिक 10,000 ऐसे लोग हैं जो शरणार्थी शिविर में नए नए आए हैं। सड़कों के किनारे कई अस्थायी तंबू नजर आ रहे हैं। हर खाली जगह भर्ती जा रही है। ये थे बांग्लादेश में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ईद के मौके पर अपने संबोधन में कहा है कि वे पाकिस्तान के साथ व्यापक राजनीतिक वार्ता के लिए तैयार हैं। राजधानी काबुल में राष्ट्रपति भवन में अशरफ गनी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ शांति अफगानिस्तान का राष्ट्रीय एजेंडा है। ये बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध हाल के वर्षों में काफी तनाव भरे रहे हैं। इंग्लैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान वेन रूनी को पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि उन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। वेन रूनी को आने वाले दिनों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वेन रूनी ने पिछले ही महीने इंग्लैंड की फुटबॉल टीम से संन्यास की घोषणा की थी। नाइजीरिया के बेनवे राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव।
मैं इस संबंध में आप संबंध में आपका सवाल सुना ही नहीं, जवाब ये है कि इस संबंध में मुझे कुछ नहीं।
ये है उमा भारती, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं और पत्रकार उनसे जानना चाह रहे थे कि क्या वो पद छोड़ रही हैं। दरअसल संकेत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही अपने मंत्रिमंडल को नई सूरत देने जा रहे हैं। अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसा कि आपने समाचारों में संदीप सोनी से सुना कि समाचार एजेंसी PTI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि रविवार सुबह 10 बजे मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। रविवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाना है। कयास है कि ये बदलाव उनकी चीन यात्रा के पहले हो सकता है। कयास ये भी है कि नए चेहरों के लिए जगह बनाने को केंद्र सरकार के एक के बाद एक मंत्री इस्तीफे दे रहे हैं। उम्मीदों और अनुमानों के दौर के बीच उत्तर प्रदेश के वृंदावन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक आज से शुरू हुई है, जिसमें BJP के अध्यक्ष अमित शाह भी पहुंचे। हम इस बैठक के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात मंत्रिमंडल फेरबदल की। बदलाव के पहले पद छोड़ने वालों में पहला नाम राजीव प्रताप रूडी का है। मैंने उनसे बात की और पूछा कि उनकी विदाई की वजह क्या है।
ये सब राजनीतिक निर्णय है और मैं समझता हूँ कि पार्टी के अध्यक्ष इन सब निर्णय को करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल कंसल्टेशन के साथ और ये बिल्कुल हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और जब जैसे जो काम मिलता है उसको बढ़िया से निभाते हैं।
आप अपने कार्यकाल को पूरा कैसे देख रहे हैं?
नहीं देखिए, वो इस बड़ी पार्टी में जहाँ करोड़ों कार्यकर्ता हैं, किसी को एक मौका मिलता है वो काम करता है, तो आप सबसे बेहतर हैं। ये कहीं भी परिभाषित नहीं होता है, मतलब आपको मौका मिला, आपने काम किया, आपने अच्छा काम करने का कोशिश किया, यही बहुत है।
जो आपको मौका मिला, जो आपके पास मंत्रालय था, अगर आपसे कहा जाए कि अब आप एक खुद जा रहे हैं, एक खुद का रिव्यू आप कैसे देखेंगे?
नहीं, मैं समझता हूँ कि कौशल प्रधानमंत्री जी का सबसे पैशनेट विषय था और उसको एक प्रकार से स्ट्रक्चर देने में शुरुआती तौर में तो कठिनाई होती है। मैं समझता हूँ कि एक स्वरूप उभर के आ गया है और जो भी इस काम को देखेगा उसके पास बहुत अच्छा काम करने की गुंजाइश होगी।
ये खबरें भी आ रही हैं कि आप बिहार में भी एक अहम जिम्मेदारी देख सकते हैं, खासतौर पर सरकार में।
मुझे कोई जानकारी नहीं इस विषय में और पार्टी जो भी तय करेगी मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूँ।
ये थे राजीव प्रताप रूडी, जो कह रहे थे कि फैसला राजनीतिक है। चर्चा ये भी है कि बदलाव में पैमाना सहयोगी दलों को एडजस्ट करने और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां से सांसदों को प्रतिनिधित्व देने का है। मैंने वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर से बात की और सबसे पहले पूछा कि उनकी जानकारी में बदलाव का पैमाना क्या है।
बड़ा कारण जो है कि सरकार की अपनी कार्यकाल की आधा पीरियड खत्म हो चुकी है। इस समय सरकार के सामने एक है किस तरह अपना छवि को और बेटर बनाए, कैसे इसको रिफर्बिश करें, उसको रिन्यू कैसे करें, नंबर वन। नंबर दो, सरकार में जो एक प्रकार से रिव्यू जो हुई है खास करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जिसमें कई मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस, सरकार के सामने जो टारगेट्स हैं, और तीसरा जो ग्राउंड पे जो रिजल्ट्स जो उम्मीद जैसे सरकार रख रही है, खास करके प्रधानमंत्री जो किस तरह के रिजल्ट्स ग्राउंड में देखना चाह रहे हैं आगे, उस रिजल्ट्स को कैसे पाए, कौन उसको पीछे लगेगा, कैसे सरकार की जो मिनिस्ट्रीज कैसे इसको पुश करेंगे, ये सारे चीजें रख के सामने रख के एक प्रकार की एक्सरसाइज है। आगे जो 6-7 जो विधानसभा चुनाव है वो भी मद्देनजर रखेंगे। सरकार के सामने जो बड़ी चुनौती जो है कि कई एरियाज हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट है, किसान के लिए जो कार्यक्रम हैं वो कैसे और भी पुश कौन दे सकता है, क्योंकि उस उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि ग्राउंड पे जो रिजल्ट्स ये उम्मीद कर रहे हैं उतना रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, क्योंकि आगे जो चुनाव है 2019 का जो लोकसभा चुनाव ज्यादातर परफॉर्मेंस पे हुआ।
इसमें ये बैलेंस बनाने की भी एक बात आ रही है कि जो नए पार्टनर्स आए हैं, चाहे वो JDU हो, AIADMK हो, उनको एडजस्ट करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको दूसरी जिम्मेदारी दी जा रही है।
जो अलायंस पार्टनर की जो आपने जिक्र किया उसपे केवल नए पार्टनर जो है वो जनता दल यूनाइटेड है, यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है उन्होंने अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी पटना में करके उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट कर ली कि वो NDO में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ADM के लेकर जो सवाल है वो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि ADM ने कोई फैसला नहीं लिया कि NDO में शामिल हो रहे हैं।
तो इतना डिले आखिर किया क्यों गया?
टैलेंट के अभाव, मतलब जो लोग चाहिए, जिस तरह की जो क्षमता की लोग चाहिए, और वैसे लोग आज के बीजेपी के अंदर वैसे लीडरशिप नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज है, जो यंग फर्स्ट टाइम एमपीज है उनमें ऊर्जा है, तो प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि कई एक्सपीरियंस और ये जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जो हमारी जो जानकारी है कि पीएमओ लगातार इसकी परफॉर्मेंस के एक ऑडिट की है, और उस ऑडिट के अनुसार उनको लग रहा है कि भाई जो कर नहीं पा रहे हैं उनको हो सकता है वो ज्यादा पॉलिटिकल फील्ड में काम करें, पार्टी के लिए काम करें।
तो क्या लगता है, ये आखिरी विस्तार है या फिर आगे भी कुछ देखने को मिल सकता है?
देखिए, 2018 को एक प्रकार से इलेक्शन ईयर ही बन जाएगा, क्योंकि 19 के अप्रैल में चुनाव होना है। मैं तो मानता हूँ 18 महीने से कम समय है सरकार के पास, तो ये एक्सरसाइज अगर ब्रॉड बेस्ड होगा, सोच समझ के होगा, और हो सकता है ये आखिर हो।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हर नेता बदलाव के सवाल को पार्टी अध्यक्ष की ओर टाल रहा है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आज वृंदावन में आरएसएस की बैठक में थे। इस बैठक में पहले दिन क्या कुछ हुआ बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं समीर आत्मज मिश्र। समीर जी, क्या खबरें निकल कर आ रही हैं?
देखिए बासल, जैसा आपने बताया कि पार्टी अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी गए, और जो संगठन मंत्री हैं रामलाल, इसके अलावा भी कुछ एक नेता वहां पे पहुंचे हुए हैं। ये आरएसएस की जो समन्वय बैठक है, इसमें इनके तमाम जो इनसे संबंधित इनके अपने संगठन हैं, आनुषंगिक संगठन जिनको कहते हैं, 40 के करीब ये बताए जाते हैं। तो ये सारे संगठनों की समन्वय की बैठक, हमारी जो प्रवक्ता है आरएसएस के डॉक्टर मनमोहन वैद्य, उनसे बात हुई, तो उनका कहना था कि एजेंडा इसमें कुछ नहीं होता है, सभी लोग अपनी अपनी बात रखते
जी,
हैं।
मीडिया के लिए एजेंडा नहीं होता है, लेकिन आपकी अनऑफिशियल भी बातचीत हुई होगी, बीजेपी अध्यक्ष वहां पहुंच रहे हैं, बिना एजेंडा के तो नहीं पहुंचेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये चूंकि अभी गुजरात में और हिमाचल में चुनाव होने हैं, जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा एजेंडा होगा। दूसरे, ठीक उससे पहले जो उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती हुई है, ये सारी चीजें और जो मंत्रिमंडल में संभावित विस्तार है, निश्चित रूप में इन सब पे विचार होगा और बातचीत होगी। दूसरे, एक चीज और बड़ी दिलचस्प बात है कि भारतीय जनता
संक्षेप में
संगठन, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे क्यों जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी कई जिम्मेदार लोगों से आरएसएस से बात हुई, तो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी होता है सब स्वयं सेवक होता है, वो प्रत्यक्ष,
तो इसलिए वो स्वयं सेवक बनकर जा रहे हैं, आपका यह कहना है। बहुत शुक्रिया समीर जी। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गाजीपुर इलाके में कूड़े का पहाड़ ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। डीसीपी ओमवीर सिंह ने हमारे सहयोगी अभिजीत श्रीवास्तव को बताया कि मलबे में दबे 4 लोगों को बाहर निकाला गया है। हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद मौके पर मौजूद हैं। शाहिद, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट है, कैसे हुई ये घटना, क्या जानकारी है आपके पास?
जी वात्सल्य, ये पूर्वी दिल्ली का गाजीपुर इलाका है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और इसमें सबसे मैं एक मेन बात बताना चाहूँ, यहाँ 2 नाले बहते हैं, एक एकदम जस्ट जो कूड़े का पहाड़ बना हुआ है
जी, वो नहर की पटरी कहलाती है, वो सड़क है, वहां से बराबर से गुजरती
है, बगल में एक नाला है। और असल में ऐसा हुआ कि आज लगभग दोपहर के करीब ये जब ऊपर से जो कूड़े का पहाड़ बन चुका है, ये जब ढहा तो ये नाले में आके इसका पानी गिरा, और वो कूड़ा नाले के गिरा, और उस पानी से जो दूसरी तरफ गाड़ियां चल रही थी उसमें एक कार और 3 पहिया वाहन वो दूसरी तरफ नाले में जा गिरे। उसके बाद जिस तरीके से हमें डीएम कुल आनंद जोशी ने बताया कि यहाँ पर कुछ जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने 5 लोगों को बचाया है। उसके बाद जब बचाव दल एनडीआरएफ का और स्थानीय प्रशासन का, तो उसने यहाँ पर अपने गोताखोर उतारे, और गोताखोर उतारने के बाद इनको 2 लाशें मिली हैं, और उसमें एक लगभग 25-30 वर्षीय महिला है और एक अधेड़ उम्र के पुरुष हैं, जिनकी डेड बॉडी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पहुंचाई गई थी।
जी शाहिद, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या बचाव का काम वहां चल रहा है या पूरा हो गया?
नहीं नहीं बिल्कुल वात्सल्य जी, यहां क्या कहते हैं, एनडीआरएफ की टीम, उसके अलावा दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीम, वो दोनों लगी हुई हैं, यहाँ कई क्रेन लगी हुई हैं, उसके अलावा 20 से ज्यादा गोताखोर हैं एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विस के मिलाकर, वो दोनों तरफ नालों में क्या कहते हैं खोज रहे हैं, क्योंकि
जी अभी बचाव का काम जारी है। शुक्रिया शाहिद, आप नजर रखें, सुबह के कार्यक्रम में हम विस्तार से जानकारी आपसे लेंगे।
बीबीसी इंडिया पोल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा और गरीब को फायदा होगा, लेकिन बेकार हुए लगभग सभी नोट बैंकों में जमा कर दिए गए, तो फिर काला धन कहां गया और विकास की रफ्तार 6% से कम क्यों हो गई? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों की पड़ताल होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 2 सितंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त विवेचना का। 45 साल पहले 5 सितंबर 1972 को म्यूनिख ओलंपिक के दौरान कुछ फलस्तीनी चरमपंथियों ने 11 इसराइली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया था। करीब 18 घंटे बाद जब जर्मन सुरक्षाकर्मियों ने इन बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की तो सभी बंधक और 5 फलस्तीनी चरमपंथी मारे गए। दुनिया को हिलाकर रख देने वाला क्या था पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फसल।
Good afternoon. I'm Jim McKay speaking to you live at this moment from ABC headquarters just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. The peace of what have been called the Serene Olympics was shattered just before dawn this morning about 5 o'clock when Arab terrorists armed with submachine guns, faces blackened...
American Broadcasting Corporation ke Kim McKay ne jab ye khabar puri duniya ko di to har jagah ek tarah ki sansani phail gayi. 6 घंटे पहले ही ब्लैक सितंबर के प्रमुख 9 फिलिस्तीनी छापामारों को म्यूनिख के ही एक रेस्तरां में खाने पर ले गए। वहीं उन्हें पहली बार बताया गया कि अगले कुछ घंटों में उन्हें किस काम को अंजाम देना है। उन सभी से उनके पासपोर्ट और दूसरी सभी चीजें ले ली गईं ताकि इस बात का कोई सुराग न रहे कि वो थे कौन। इसके बाद वो सब ओलंपिक गांव की तरफ बढ़ गए। अफ्रीका के किसी देश में अंडरग्राउंड जिंदगी बसर कर रहे ब्लैक सितंबर के पूर्व फिदायीन जमाल अल काशी याद करते हैं।
जब हम चार दीवारी के तारों को पार कर रहे थे, हमारा सामना कुछ अमरीकी एथलीटों से हुआ। वो रात में मजे लेकर वापस खेलगांव लौट रहे थे। मुझे याद है उन सब ने शराब पी रखी थी। दिलचस्प बात यह है कि हमने एक दूसरे को तारों की बाढ़ पार करने में मदद की। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनमें से एक को पकड़कर तारों के उस पार कर दिया। हमने एक दूसरे को शुक्रिया और बाय भी कहा।
इन चरमपंथियों को तड़के सुबह 4 बजे ओलंपिक गांव की 6 फीट ऊंची तार की बाढ़ फलांगते देखा गया। ठीक 4:25 पर 31 कोनोली स्ट्रॉस के अपार्टमेंट 1 को खोलने के लिए मास्टर की अंदर घुसाई। अपार्टमेंट के अंदर सभी इजरायली गहरी नींद में सोए हुए थे। सिर्फ कुश्ती के रेफरी योसेफ गटफ्रायन थोड़े उन्हीं दे थे। मशहूर पत्रकार जॉर्ज जोनास अपनी किताब वेंजियंस ए ट्रू स्टोरी ऑफ एन इजरायली काउंटर टेररिस्ट टीम में लिखते हैं,
योसेफ को थोड़ी सी आवाज सुनाई दी जैसे कोई दरवाजे को खुरच रहा हो। मामूली रोशनी में भी नींद से भरी आंखों के बावजूद उन्हें एक फिदाइन की आंख और उसकी कैलिशनिकोव की नाल दिखाई दे गई। एक सेकंड में उनकी नींद काफूर हो गई और 6 फीट 3 इंच ऊंचे 140 किलो वजनी भीम का योसेफ ने चिल्लाकर हिब्रू में कहा, चेवरेतिस्तात्रु यानी बचो लड़कों। उन्होंने अपने भालू जैसे शरीर का पूरा वजन दरवाजे के पीछे लगा दिया। चरमपंथियों ने दरवाजे की चाबी जमीन पर गिरा दी और सातों लोग एक साथ दरवाजे को धक्का देने लगे।
योसेफ ने पूरे 10 सेकंड तक दरवाजा नहीं खुलने दिया। तुविया सोकोलोस्की के लिए खिड़की तोड़कर निकल भागने के लिए इतना समय काफी था। उधर इसराइलियों के ठीक सामने रह रहे भारतीय दल के सदस्य एडवर्ड सुक्वीरा की भी उसी समय आंख खुल गई।
एक रूम में था, ग्राउंड फ्लोर में, और अबाउट 4:25 में क्या हो गया, वो बहुत गड़बड़ हो गया। ऑपोजिट बिल्डिंग में इंडिया आई था एंड इजराइल आई था, सामने था वो लोग। मैं तो सो गया था बिकॉज नेक्स्ट डे हम इवेंट करने वाला था 5000। मैं बोला ये क्या है, मैं पहला समझा पाकिस्तान अटैक करता क्या आप उनको। मैं श्रीराम को बोला उठो देखना क्या आदमी लोग पहले माला से जंप करता है इधर मारता है। एंड सब ट्रैक सूट में था, ब्लैक बैग था एंड मास्क था। वो लोग सेकंड फ्लोर में था और मैं क्या देखा वो लोग को एक एक दो दो आदमी को रेसलर को इसराइल वालों को एक रूम में डाला था।
ब्लैक सितंबर के चरमपंथियों को इसराइली एथलीटों को काबू करने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन पहले उन्होंने योसेफ गटफ्रायन को मारा और फिर मोशे वैनबर्ग को, क्योंकि उन्होंने फल काटने के चाकू से उनके नेता पर हमला कर दिया था। तभी अपार्टमेंट नंबर 2 में रह रहे एक और इसराइली शाउल लडानी को उनके साथी ने जगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वो अपने पायजामे में ही निकलकर बाहर आ गए।
The terrorists from the second floor from apartment number 1 had a clear view from the window.
अपार्टमेंट नंबर 1 की दूसरी मंजिल की खिड़की से जैसे ही एक फिदायीन ने हमें देखा वो बाहर निकल आया। मैं बिना दौड़े सधे सामान्य कदमों से बाहर जा रहा था, इसलिए उसे शायद ये गलतफहमी हो गई कि मैं इसराइली नहीं हूँ। मैं शायद बेवकूफी कर रहा था, लेकिन हम सही सलामत अपार्टमेंट से बाहर निकल आए।
उसी समय भारतीय हॉकी टीम के सदस्य अशोक कुमार भी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहे थे।
हम उठे अपनी प्रैक्टिस के लिए और पूरी टीम तैयार होकर निकली है अपने अपने कमरों से बाहर और इकट्ठे होकर हम निकले हैं। और मैं जब नीचे आया हूँ और दरवाज़ा खोला है तो सामने मैंने एक मजमा एक बहुत बड़ी भीड़ देखी जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे, वहाँ के लोकल पुलिस, और उनके कंधों पे और हाथों में बंदूकें। तो बड़ा देख के ताजुब सा हुआ कि क्या हो रहा है। इसी पशुपेश में मेरी नज़र जो है वो सामने के फ्लैट्स के ऊपर, हमारे सामने करीब 20 गज का एक मैदान था, उस मैदान के बाद दूसरे फ्लैट बने थे, उन फ्लैटों में इजरायली टीम रह रही थी। तो उसमें मेरी नज़र गई तो ऊपर के दूसरे या तीसरे फ्लोर के ऊपर नकाबपोश एक इंसान, और वो बंदूक हाथ में लिए वो नीचे उनकी बातचीत किसी से हो रही है। तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या ये।
This is building number 31 and we're moving in now on the windows behind which at this moment
ब्लैक सितंबर के चरमपंथियों ने इन 9 इसराइलियों को छोड़ने के बदले इसराइली जेलों में बंद अपने 234 साथियों को छोड़वाने की मांग रखी। लेकिन इसराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मईर ने अपने पूर्व घोषित नीति के अनुसार उनकी इस मांग को मानने से इनकार कर दिया।
अगर हम उनकी बात मान लेते हैं तो दुनिया में कोई भी इसराइली ये महसूस नहीं कर पाएगा कि उसकी जिंदगी सुरक्षित है। इससे बुरा कोई ब्लैकमेल नहीं हो सकता।
कोई समझौता होते न देख जर्मन प्रशासन इन चरमपंथियों को बंधकों के साथ काहिरा जाने के लिए अपना 727 विमान देने के लिए सहमत हो गया। उन्हें हवाई अड्डे ले जाने के लिए खेल गांव में ही 2 हेलीकॉप्टरों में बैठाया गया। उस समय इसराइली तैराकी टीम की सदस्य श्लोमित नियर अपनी खिड़की से ये दृश्य देख रही थी।
Two helicopters were landing just under our building.
हमारी इमारत की ठीक बगल में 2 हेलीकॉप्टर्स ने लैंड किया। हमने अपने हर एक साथी को देखा। हम उनकी चाल से उनको पहचान सकते थे। उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थीं और वो सब भी एक दूसरे से बंधे हुए थे। उनमें से 4 लोगों को एक हेलीकॉप्टर पर बिठाया गया और 5 को दूसरे हेलीकॉप्टर में। सारे चरमपंथी भी उनके साथ चल रहे थे। हमने मन ही मन दुआ मांगी कि उनके साथ कुछ गलत न हो।
ठीक रात के 10:20 पर उन 2 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी।
Now proceed out over the Olympic site, out over the main stadium where half the lights are on. The second helicopter is now following it and moving out around this.
Israeli hostages and the Arab commanders who have held them hostage for this entire day have now left.
इससे ठीक पहले इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख जवी जामीर भी फर्स्ट एंड फेल्डब्रक हवाई अड्डे पहुंच गए। जामीर याद करते हैं।
They weren't capable. I mean, I can tell you that I doubt whether the snipers were.
जब मैं वहां पहुंचा तो वहां घुप अंधेरा छाया हुआ था। मुझे सहसा इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। अगर हम वहां के इंचार्ज होते तो हमने उस इलाके को फ्लड लाइट से भर दिया होता। मुझे लगा कि वहां हर जगह छाए के अंदर स्नाइपर्स बैठे होंगे, लेकिन वहां उन 5 स्नाइपर्स के अलावा निशाना लेने के लिए कोई नहीं था। जर्मन बिल्कुल अनाड़ियों की तरह काम कर रहे थे।
जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करने लगे चीजें खराब होती चली गईं। वन डे इन सितंबर के लेखक साइमन रीव बताते हैं।
Literally, as these helicopters were circling the apron ready to land, 17 German police officers who were manning.
जब ये हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए ऊपर चक्कर लगा रहे थे, काहिरा जाने के लिए तैयार 727 बोइंग विमान में तैनात 17 जर्मन सैनिक विमान से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि वहां उनके लिए बहुत खतरा है। इसका नतीजा ये हुआ कि हथियारों से लैस 8 फलस्तीनी चरमपंथियों से निपटने के लिए सिर्फ 5 जर्मन स्नाइपर बचे रह गए। वो बस नाम के ही स्नाइपर थे, न तो उनके पास इस तरह के ऑपरेशन के लिए कोई प्रशिक्षण था, न ही उचित हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट्स। वो पूरे हवाई अड्डे पर छितरे हुए थे। उनमें से कम दो लोग दूसरे स्नाइपर्स की फायरिंग रेंज की सीध में थे। बिल्कुल नौसिखियों की तरह इस हमले की योजना बनाई गई थी।
जर्मन निशानेबाजों का निशाना चूक गया। एक चरमपंथी के पैर में गोली लगी। वो लंगड़ाता हुआ हेलीकॉप्टर तक पहुंचा और उसके नीचे छिप गया। जर्मन इस तरह फायरिंग कर रहे थे जैसे वो कबूतरों पर निशाना लगा रहे हों। दूसरी तरफ चरमपंथी बहुत अधिक मोटिवेटेड थे। वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। इस बीच एक जर्मन अफसर के सिर में गोली लगी और उसकी तुरंत मौत हो गई। साइमन रीव कहते हैं,
And then finally some German armored cars arrived on the scene. They'd been called in by the German officials in the hope that they would be able to get closer to the helicopter.
फायरिंग शुरू होने के काफी देर बाद हेलीकॉप्टर्स की तरफ बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गईं। इन गाड़ियों में सवार जर्मन सैनिकों ने फलस्तीनी चरमपंथी समझकर अपने ही एक साथी पर गोली चला दी। उस समय चरमपंथियों को लगा कि अब उनका अंतिम समय आ गया है और उनके पास उन बंधकों को खत्म करने का आखिरी मौका बचा है। उन्होंने अपनी बंदूकों की नाल हेलीकॉप्टर्स के पीछे बैठे हुए इसराइली बंधकों की तरफ घुमा दी। एक दूसरे चरमपंथी ने दूसरे हेलीकॉप्टर के अंदर एक ग्रेनेड फेंक दिया जिससे उसमें आग लग गई। उसी समय सारे 9 इसराइली बंधकों की मौत हो गई। उस समय वहां सैकड़ों जर्मन सुरक्षाकर्मी मौजूद थे लेकिन वो एक भी इसराइली बंधक को बचा नहीं सके।
इस बीच पता नहीं कहां से ये खबर फैल गई कि ऑपरेशन सफल रहा है और सभी बंधकों को बचा लिया गया है। सबसे पहले फ्लैश रॉयटर्स पर आया। जैसे ही गोल्डा मेयर को इसके बारे में पता चला, उन्होंने खुशी के मारे शैंपेन की बोतल खोल दी।
On the radio, it was transmitted almost the whole world that all the hostages are safe.
रेडियो पर पूरी दुनिया को खबर सुनाई गई कि सारे बंधक सुरक्षित हैं। हम सब लोगों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर हम लोग सोने चले गए। करीब 5:30-6 बजे किसी ने मुझे जगाकर कहा कि कोई भी जिंदा नहीं बचा है।
उसी समय हवाई अड्डे से ही सारा दृश्य देख रहे मोसाद प्रमुख जमीर ने इसराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर को फोन लगाया। जब उन्होंने गोल्डा को यह खबर दी तो उनके हाथ से फोन का रिसीवर छूट गया। कुछ ही सेकेंडों बाद टेलीविजन पर जिम मैके की आवाज गूंजी।
They now said that there were 11 hostages. Two were killed in their rooms yesterday morning. 9 were killed at the airport tonight. They're all gone.
इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद म्यूनिक ओलंपिक खेलों को रोका नहीं गया। जर्मन सरकार के असफल बचाव अभियान पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। पकड़े गए 3 फलस्तीनी चरमपंथियों को सिर्फ 3 हफ्ते बाद उस समय रिहा कर दिया गया जब ब्लैक सितंबर ने लुफ्थांसा का एक और विमान हाईजैक कर लिया। इनमें से 2 चरमपंथियों को बाद में इसराइली सीक्रेट एजेंट्स ने मार दिया। एक चरमपंथी अभी भी जीवित है और अफ्रीका के किसी देश में एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
विवेचना पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। वक्त विदा लेने का हो रहा है लेकिन मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं संदीप सोनी से।
BBC समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक परसों यानी रविवार को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है जिनमें राजीव प्रताप रूड़ी भी शामिल हैं। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर में कचड़े का एक विशाल ढेर खिसकने से कम 2 लोग मारे गए हैं और कई अन्य लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अफ्रीकी देश केन्या के सुप्रीम कोर्ट ने देश में पिछले महीने हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को अमान्य घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पूर्वोत्तर म्यांमार में इस हफ्ते अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान और सुरक्षा बलों के बीच हुए संघर्ष में लगभग 400 लोग मारे गए हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ईद के मौके पर अपने संबोधन में पाकिस्तान के साथ व्यापक राजनीतिक वार्ता के लिए इच्छा जताई है। BBC समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया विकास त्रिवेदी ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।